दिन भर तारीख 8 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तीन तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की, कहा कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ।
वो हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, तो उस पर अमल करने का यानी संवैधानिक हक हासिल है, तो अब उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है।
नोटबंदी के पूरे हुए आज एक महीने पर एटीएम के बाहर अब भी लंबी लाइनें। 2500 के नए नोट एटीएम में फिट नहीं होते। अब तक कितने एटीएम हो चुके हैं दुरुस्त?
करीब 190,000 एटीएम रिकैलिब्रेट हो चुके हैं, नए नोट एटीएम डिस्पेंस कर पाएंगे अभी।
बीबीसी ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कई महिलाओं के विकी प्रोफाइल अपलोड किए। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। तीन तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और इससे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। इस मामले में दो अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। यूरोपीय संघ उन 7 ईयू देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है जो कार निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ उत्सर्जन की धांधली को लेकर कदम उठाने में विफल रहे हैं। इनमें से एक देश जर्मनी है जो यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा कार निर्माण करने वाले देशों में से एक है। इन सभी देशों पर आरोप है कि जिस तरह अमरीका ने फॉक्सवैगन पर कड़ी कार्रवाई की है, वैसे कदम उठाने में ये देश विफल रहे हैं। यूरोपीय कमीशन के एक वक्तव्य में कहा गया है कि सदस्य देशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कार निर्माण करने वाले देश ईयू कानूनों का पालन करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि पायलट ने संपर्क टूटने से पहले आपात कॉल किया था। पीआईए के अध्यक्ष मोहम्मद आजम ने रिपोर्टरों से बताया कि पायलट ने स्थानीय समय अनुसार 4:09 पर इंजन में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। बुधवार को हुए पीआईए विमान संख्या 661 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में सभी 47 लोगों की मौत हो गई थी। ये विमान चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इस दुर्घटनाग्रस्त की जांच जारी है, लेकिन विमान कंपनी किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के ना होने का दावा कर रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस में वेतन में कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल हो रही है। सरकारी अधिकारियों, बैंक, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों और डॉक्टरों के इस एक दिन की हड़ताल में शामिल होने की वजह से यहां के मुख्य क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है। मजदूर संघों ने ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों की मांग को बेतुका बताया है और एक दिन की हड़ताल में शामिल होकर अपने गुस्से का इजहार किया। ये माना जा रहा है कि सरकार इस हफ्ते पेश होने वाले नए बजट के दौरान वेतन और पेंशन में कटौती को स्वीकृति दे सकती है। इस हड़ताल में शामिल हुए निकोस का कहना था कि यहाँ लोग काफी दबाव में हैं। मेरा मानना है कि सुधार का कभी खत्म नहीं होंगे और कदम लगातार उठाए जाएंगे। हमने सरकार को अपनी बेहतरी के लिए चुना था, मैंने इसके लिए मतदान नहीं किया था। ये थे हड़ताल में शामिल निकोस के शब्द। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेजा मे की प्रवक्ता ने विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के सऊदी अरब पर दिए गए बयान से सरकार को दूर रखा है। पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में बोरिस जॉनसन ने सऊदी अरब और ईरान पर सीरिया और यमन में विपक्षी पक्षों का सहयोग करने और इससे मध्यपूर्व में हो रहे छद्म युद्ध का आरोप लगाया था। टेरेजा मे की प्रवक्ता का कहना था कि सरकार सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पिछले कई महीनों से तीन तलाक का मुद्दा सुर्खियों में है। आज एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया, क्योंकि तीन तलाक के मुद्दे पर एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता है और इससे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। ये टिप्पणी की। पिछले दिनों इस मुद्दे पर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस गर्म हुई थी, तो इसे लेकर मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने तीन तलाक में किसी भी तरह के बदलाव का जमकर विरोध किया था। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अदालत की इस टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया और कहा है कि यदि इससे संबंधित कोई फैसला आता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की यह रिपोर्ट।
तलाक के दो अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने तीन तलाक को लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस तरह के तलाक की इजाज़त कुरान भी नहीं देता और इसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को क्रूरता का भी शिकार होना पड़ता है। अदालत का यह भी कहना था कि यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है और कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अदालत की सुनवाई पर नजर रख रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट अब्दुल कदीर ने इस बारे में और जानकारी दी।
इसमें जो है वो हस्बैंड ने वाइफ ने मुकदमा दायर किया, ये कहा कि हस्बैंड जो है वो पहले भी वो तलाक देकर के मुझसे शादी कर दिया है, अब पुलिस परेशान कर रही है। तो कोर्ट ने इस पर तो उनका रिजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया कि साहब ये जो है शादी हुई है कि नहीं हुई है, तलाक वैलिड हुई है कि नहीं हुई है, इस पर हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, इसको ओपन किया जाता है। लेकिन ट्रिपल तलाक के बारे में बहुत सी बातें कह दी जो उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थी, और न दूसरी पार्टी को नोटिस जारी किया था, एक तरफा फैसला दे दिया और ये कह दिया कि साहब ये जो है तीन तलाक जो है गलत है।
हालांकि तीन तलाक के मुद्दे पर अदालत का ये नजरिया था कोई फैसला नहीं, लेकिन तीन तलाक को गैर संवैधानिक कहे जाने पर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सख्त एतराज जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस्लामी विद्वान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं,
जब हमारे मुल्क के संविधान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी दी है और जो कि मजहबी आजादी रिलीजियस फ्रीडम के अंदर में आता है और मुस्लिम और अन्य मजहबी इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है और चाहे तलाक कानून निकाह हो या कानून तलाक हो वो हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, तो उस पर अमल करने का यानी हमें संवैधानिक हक हासिल है। तो अब उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है ये फैसला कानूनी इदारों को करना है।
दरअसल तलाक के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने तलाक के संबंध में ये बातें कहीं। सीनियर एडवोकेट अब्दुल कदीर कहते हैं कि इस मामले में ऐसी टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं थी और कानूनी तौर पर इसकी कोई बहुत अहमियत भी नहीं है।
ये दोनों बातें लिखते हुए फैसला देते कि तलाक फ्लैट नहीं हुआ है, इसको ओपन छोड़ दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अदालत जहाँ मुकदमा चलेगा वहाँ देखा जाएगा, तो कानून के जबान में इन्हें अनवारंटेड कहा जाता है कि जो फैसला देने की आवश्यकता नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अनकाल पारे कानून के जबान में कहते हैं कि जो चीज फैसला देने के लिए जरूरी ना हो वो ऑब्जर्वेशन अनकाल पार होता है, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं।
पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने तीन तलाक में किसी तरह के बदलाव का जमकर विरोध किया था। तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ मामले चल ही रहे हैं, दूसरी तरफ विधि आयोग ने भी पिछले दिनों जिन 11 सवालों पर आम लोगों की राय मांगी है उनमें तीन तलाक का भी सवाल दर्ज है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो एक बार फिर से तीन तलाक का मुद्दा गर्म है और ये मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद गर्म हुआ है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। आज से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही घोषणा की 1,500 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बाद से बैंकों और ATM के सामने लोगों की न खत्म होने वाली लाइनें लग गईं। लोगों की जब बारी आई तो बैंक में कैश खत्म हो गया, ATM खाली हो गए। सरकार अब कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है, यानी कि डिजिटल तरीके से भुगतान। सरकार ने इस बारे में आज 11 अहम फैसले लिए। इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर सर्विस टैक्स में छूट से लेकर ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग पर कई रियायतों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कार से डीजल व पेट्रोल भरवाने पर 0.75% की छूट मिलेगी। सार्वजनिक बीमा कंपनियों की वेबसाइट से साधारण जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने व प्रीमियम के भुगतान पर 10% व 8% का डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने कहा
4,32,00,000 किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनको रुपे किसान कार्ड देगी, जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, माइक्रो ATMs और ATMs तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके उनको उन टिकट्स पे रेलवे 0.5% का डिस्काउंट देगी।
तो सरकार अब कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है, यानी कि डिजिटल तरीके से भुगतान करने को प्राथमिकता दे रही है और कुछ रियायतों की बात कर रही है। लेकिन अगर बैंकों की बात करें, एटीएम की बात करें, तो एटीएम की हालत ऐसी है कि कैश आता नहीं कि घंटों में खत्म हो जाता। एक तो बैंकों में नकदी की समस्या और ऊपर से एटीएम में नए नोट फिट नहीं हो रहे, ना तो 2000 के और ना ही 500 के नए नोट। नोटबंदी के 1 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन कई जगहों पर एटीएम के बाहर अब भी लाइनें हैं। भारत में करीब 2,00,000 एटीएम हैं और आरबीआई की कोशिश है कि इन सभी एटीएम को नए नोटों के हिसाब से दुरुस्त किया जाए। विनीत खरे ने बात की एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर प्रमुख नवरोज दस्तूर से और पूछा कि अभी 2,00,000 एटीएम में से कितने एटीएम दुरुस्त किए गए हैं।
करीब 1,90,000 एटीएम रिकैलिब्रेट हो चुके हैं।
90%?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
मतलब रिकैलिब्रेट का मतलब है कि जो नए नोट
नए नोट है इसके, आपके जो 500 और 2000 रुपए वाले नए नोट
जी,
वो एटीएम डिस्पेंस कर पाएंगे अभी।
अच्छा सर, 1 महीने का अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस बताऊं, कितना मुश्किल रहा है ये सफर और क्या चैलेंजेस रहे अगर आप मुड़ के देखें?
ये काफी चैलेंजिंग काम था क्योंकि ऐसा काम कहीं दुनिया में नहीं हुआ है जहां 2,00,000 एटीएम आपको 15-20 दिन में ठीक करने होते हैं, जिससे आप जो नोट इश्यू की है गवर्नमेंट ने वो आपको डिस्पेंस करना पड़ेगा। तो इसका लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफी चैलेंजेस पड़ी थी हमको। 2,00,000 एटीएम स्प्रेड ऑल अक्रॉस पूरे हिंदुस्तान में, उन सब एटीएम्स को फिजिकली एक इंजीनियर को जाके वहां उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ा।
तो सर अगर हम आसान भाषा में समझ पाएं तो एक इंजीनियर जब जाता है एटीएम में तो बेसिकली हम रिकैलिब्रेट का मतलब है कि जो नोट जिस तरह के जो शेप एंड साइज के पहले वो डिस्पेंस करते थे एटीएम, अब हमें उसको बदल के चेंजेस लाने हैं उस एटीएम में कि वो नए तरह के जो नोट्स आए हैं उस तरह के नोट्स को समझे और डिस्पेंस करे।
बिल्कुल बिल्कुल।
और इसको करने में करीब एक एटीएम को करने में एक इंजीनियर को करीब कितना टाइम लगता है सर?
करीब 40 मिनट लग जाते हैं एक इंजीनियर को कैलिब्रेट करने में।
और किस तरह का डिप्लॉयमेंट आपने किया, करीब कितने इंजीनियर्स रहे आपके इस पूरे काम में?
टोटल एनसीआर के करीब 1,000 इंजीनियर थे और बाकी जो एटीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे उनके भी करीब 1,000, तो करीब 2,000-2,500 इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये सारा काम किया
जी। तो सर अभी जो 10% करीब बचे हैं वो करीब कब तक हो पाएंगे कुछ ये
एक? वो अभी हो जाएंगे, 3-4 दिनों का काम,
3-4 दिनों में हो पाएंगे।
हाँ जी
सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने बताया ऑफ कोर्स बहुत सारे रिमोट जगहों पर इंजीनियर्स गए होंगे आपके, कुछ बता पाएंगे एक्सपीरियंसेस पिछले 1 महीने में आपको लोगों ने कॉल किया हो इंजीनियर की यहाँ पे कैसे ढूंढे समथिंग इस तरह से आप मैनेज करना कुछ?
नहीं, हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिला था कैश इन ट्रांजिट कंपनी से, तो हमारे इंजीनियर उनके साथ जाते थे हर एक लोकेशन में। कहीं कहीं चैलेंजेस पड़ी थी क्योंकि कहीं कहीं लोग काफी अपसेट थे कि एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं दिक्कतें भी पहुंची लोगों को क्योंकि पब्लिक जो है वो काफी गुस्से में थी कि पैसे नहीं मिल रहे, तो कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आई थी काम में, बट उन्होंने फिर भी आई थिंक बहुत अच्छा काम किया और 22 दिन में हमने ये सारा काम कर दिया है।
जो कई जगह जहां पर रिकैलिब्रेट हो गए हैं वहां पर अभी भी लोगों की शिकायत है कि वहां पर कैश अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आपका तो कोई रोल नहीं होगा, मतलब ये तो बैंकों का काम है?
बिल्कुल, ये बिल्कुल बैंकों का काम है। जो हमारा काम था वो एटीएम को तैयार करके रखना था ताकि जो नए नोट्स है 500 और 2000 के वो एटीएम डिस्पेंस कर पाए। अब बैंकों के ऊपर है, आरबीआई के ऊपर है कि वो नई करेंसी बैंक को दे और बैंक वो हिसाब से वो करेंसी एटीएम में दे।
एटीएम बनाने वाली कंपनी के एनसीआर प्रमुख नवरोज दस्तूर बता रहे थे कि देश में लगभग 90% एटीएम दुरुस्त कर दिए गए हैं, यानी कि वो 2000 और 500 के नए नोट निकालने में सक्षम हो गए हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कार्यक्रम में रुख अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं कि सीरिया के अलप्पो में रेडक्रॉस ने करीब 150 लोगों को बाहर निकाला है जो कि बीमार और घायल हैं। इन लोगों को अलप्पो के हाल में किए गए सरकारी सेना के नियंत्रण वाले इलाके से निकाला गया है। विद्रोहियों ने 5 दिन के संघर्ष विराम की मांग की है जिससे घायलों को उनके कब्जे वाले इलाके से बाहर निकाला जा सके। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए तृप्ति श्रीवास्तव से।
सीरिया के शहर एलेप्पो में विद्रोहियों और सरकारी सेना की कई दिनों से चल रही लड़ाई के बीच कई घायल और बीमार लोग पुराने एलेप्पो में फंसे हुए थे। ये विद्रोहियों के कब्जे वाला क्षेत्र था। अब जब सीरियाई सरकार ने विद्रोहियों के कब्जे वाले बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है तो रेड क्रॉस ने वहां से करीब 150 बीमार और घायल लोगों को बाहर निकाला है। कई लोग इस हालत में थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इन लोगों को निकालने का काम सीरियन अरब रेड क्रीसेंट और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का साझा अभियान था। इनमें से 11 लोगों की मौत दोनों तरफ से हो रही फायरिंग या इलाज मुहैया न होने की वजह से हो गई। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के पावेल करजायसिक ने बीबीसी को बताया,
फॉर सम द ऑपरेशन केम टू लेट, 11 पीपल डाइड बिफोर द सीरियन अरब रेड क्रेसेंट बिफोर द आईसीआरसी टीम्स।
11 लोगों की मौत हमारे पहुंचने से पहले हो गई। इलाज न मिलने की वजह से इन लोगों की मौत हुई। ये बहुत दर्दनाक है। ये और भी ज्यादा दर्दनाक होता है जब आप 150 लोगों को बचा लें और उनमें से 11 लोगों को बचा पाने में आप नाकाम हो जाएं।
पिछले 3 हफ्तों में सरकारी सेना ने पूर्वी अलेप्पो के पुराने शहर के करीब 75% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इस क्षेत्र पर पिछले 4 साल से विद्रोहियों का कब्जा था। इस लड़ाई के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अभी भी 1,00,000 से ज्यादा लोग विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे हैं। इन लोगों के लिए खाने की कमी है और इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है। सीरियाई सरकार के एक मंत्री का कहना है कि एलेप्पो में सीरियाई सेना की बढ़त ने सीरियाई संघर्ष को पूरी तरह बदल दिया। सीरियाई सरकार के मंत्री अली हैदर ने कहा कि विद्रोहियों की सेना हतोत्साहित है और उनकी तरफ से विरोध भी कम हो रहा है। अली हैदर ने कहा,
एलेप्पो में मिली जीत गौरवपूर्ण और रणनीतिक है। ये राजनीतिक प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगी।
इस बीच एलेप्पो में संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मिलने वाले हैं। ये दोनों जर्मनी में शिखर सम्मेलन के बाद विद्रोहियों को निकालने के लिए संघर्ष विराम पर बात करेंगे।
सीरिया के बाद रुख अमेरिका का। अमेरिका में रहने वाले सैकड़ों मुसलमानों ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्हें हिंसा से बचाने की मांग की गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव खत्म होने के 1 महीने के बाद मुसलमानों को निशाना बनाकर हमला करने के कई मामले सामने आए हैं। इनमें हिजाब पहनने वाली महिलाओं को भी निशाना बनाया गया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम इस खुले पत्र में विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं से जुड़े 300 से अधिक अमरीकी मुसलमानों ने नए प्रशासन की कुछ प्रस्तावित नीतियों की आलोचना की और मांग की कि मुसलमानों को हिंसा से बचाया जाए। ये पत्र मुस्लिम लेटर टू ट्रंप.com नामक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसमें काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिका के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर और छात्रों के साथ साथ कई मस्जिदों के इमाम और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इन मुस्लिम गुटों ने डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों की आलोचना की है जिसमें अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, समुदाय के लोगों की जासूसी करने और उनके पंजीकरण की बात की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करके खत में लिखा गया है कि हम विनती करते हैं कि आप साफ शब्दों में सख्ती से इस प्रकार के द्वेष से प्रेरित हमलों की भर्त्सना करें जिनमें मुस्लिम समेत किसी भी अमरीकी को निशाना बनाया जाता है। अमरीकी मुसलमानों द्वारा पत्र में आगे लिखा गया है कि हम उन खबरों से भी चिंतित हुए हैं जिनमें कहा गया है कि आपके प्रशासन के सदस्य उन प्रस्तावों पर गौर कर रहे हैं जिनमें मुस्लिम लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाएगा और जिनसे मुस्लिम अमरीकियों के अमरीकी संविधान के तहत अधिकारों का हनन भी होगा। आपकी टीम द्वारा ऐसे प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं जिनमें मुस्लिम अप्रवासियों और पर्यटकों को पंजीकरण करवाना होगा। इस पत्र में मुसलमानों ने नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी संविधान और देश की स्थापना के बुनियादी उसूलों पर चलते हुए अमेरिका को महान बनाने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन यह भी लिखा गया है कि देश के हर राजनीतिज्ञ को इस बात पर परखा जाएगा कि वो सभी अमरीकियों को संविधान के तहत बराबरी का दर्जा देते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी मुहिम के दौरान आतंकवाद का हवाला देते हुए कहा था कि मुसलमानों के अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ए टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
इसके अलावा ट्रंप ने कहा था कि मुसलमान लोगों की और उनकी मस्जिदों की निगरानी भी की जानी चाहिए, लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कि सारे मुसलमानों को नहीं बल्कि आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों के मुसलमानों की अमेरिका में प्रवेश से पहले गहन छानबीन होनी चाहिए। اب امریکی مسلمانوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ آنے والے ٹرمپ پرشاسن کے ساتھ ملاقات بھی کریں اور اپنی سمسیاؤں کو ان کے سامنے رکھیں۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے طارق الرحمان کہتے ہیں،
لیٹر ہیں، دوسرا کچھ کمیونٹی کے لوگ ملنا بھی چاہ رہے ہیں، نئے ایڈمنسٹریشن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مختلف ریسورس کو ہم جب ایک ساتھ کریں گے تو اس کا افیکٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لازمی ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹائم لگے۔ کچھ مسلم ریپبلکنس بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مسلم لیڈرشپ کا کوئی میٹنگ ہو جائے جس میں ان کو انوائٹ کیا جائے اور بات کریں اس میں ایشوز پہ کھل کے، جو وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔
حال ہی میں امریکہ کے کئی شہروں میں مسلم ورودی حملوں میں بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ پچھلے ہفتے نیو یارک میں 3 مسلم مہیلاؤں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، یہ تینوں حجاب پہنے ہوئے تھیں اور ان میں سے ایک مہیلا پولیس افسر ہیں اور دوسری ریل کرمچاری ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
یہ تو بات ہوئی امریکہ کی۔ یدی آپ انٹرنیٹ پر کچھ کھوجتے ہیں تو پائیں گے کہ وکیپیڈیا پر موجود مشہور ہستیوں کے پروفائل میں سے صرف 17% ہی مہیلاؤں کے ہیں۔ بی بی سی آج کل ایک وشیش شرنکھلا پرسارت کر رہا ہے اور اس شرنکھلا کا نام ہے 100 ویمن سیریز۔ میرے ساتھ دیویا آرے موجود ہیں۔ دیویا، آج بی بی سی ہندی نے کچھ مہتوپورن لوگوں کے، مہیلائیں جو ہیں، ان کے پروفائل وکیپیڈیا پر اپلوڈ کیے۔ سب سے پہلے ہمارے شروتاؤں کو یہی بتائیے کہ یہ وکیپیڈیا ہے کیا جنجال؟
جو انسان انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے یا گوگل کا استعمال کرتا ہے کسی کی بھی جانکاری ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ پائے گا کہ جب کسی کا نام ڈالے گا تو سب سے پہلا رزلٹ جو ہوگا وہ وکیپیڈیا کا ہوگا۔ وکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے، یہ ایک بنا کوئی پروفٹ کی، ناٹ فار پروفٹ ویب سائٹ ہے، بنا منافع کمانے کے لیے، اور یہ لوگ ہی بناتے ہیں، یعنی کہ آپ اور میں جو جانکاری اس میں ڈالیں گے اسی سے وہ جانکاری کا بھنڈار بنتا جائے گا۔
اگر میں دیویا آرے سرچ کروں تو وکیپیڈیا پہ ملے گا؟
نہیں، اتنی خوش قسمتی میری نہیں ہے، ابھی کسی کو میری پترکاریتا اتنی ضروری نہیں لگی کہ میرا نام وہاں ڈالا جائے۔ وہاں نامی گرامی لوگ ہیں جو کسی وجہ سے، جن کے بارے میں آپ اور میں جاننا چاہیں گے، مشہور ہیں، لیکن یہ لوگ ہی بناتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وکیپیڈیا میں، جیسا آپ نے کہا، 17% ہی عورتیں موجود ہیں، یعنی وہاں ہر 100 لوگوں میں 83 نام آدمیوں کے ہیں اور 17 عورتوں کے ہیں، اور یہ جو امبیلنس ہے اسی کو صحیح کرنے کے لیے بی بی سی نے آج 100 ویمن کے تحت یہ سوچا کہ کچھ عورتوں کے نام ہم خود جوڑیں۔
میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ کن مہیلاؤں کے نام آج بی بی سی نے وکیپیڈیا پہ لگائے۔
دیکھیے، بی بی سی ہندی نے نام تو 20 ڈالے، سب کی چرچا یہاں کرنا ویوہارک نہیں ہے، پر کتنا رینج تھا ان میں، کتنے الگ الگ طرح کی عورتیں تھیں۔ میں 3 ادھارن آپ کو دوں گی۔ ہم نے بیرو بالا رابھا کا نام اس میں ایڈ کیا، یہ وہ عورت ہیں جو اب کافی عمر ہو گئی ہے، ان کی 60 سے اوپر کی عمر ہے، اور انہوں نے جو ڈائن بتا کر عورتوں کی ہتیا کرنے کی پرتھا ہے اس کے خلاف بہت لمبی مہم چھیڑی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف قانون بنا جس کے لیے انہیں کو بہت شرے دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف ممتاز شیخ ہیں جو مہاراشٹر میں عورتوں کے لیے سارجنک شوچالے اپلبدھ ہوں، سارجنک جگہوں پہ شوچالے اپلبدھ ہوں، اس کے لیے رائٹ ٹو پی کیمپین چلا رہی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈالا، جن کی وجہ سے وہاں کافی سارے سارجنک شوچالے بنے ہیں۔ اور ادیتی گپتا، جنہوں نے ماہواری یعنی کہ عورتوں کی سواستھ سے جڑی بڑی اہم جانکاری جو شرم کے پردے کے پیچھے رہتی ہے، اس سے جڑی ایک ویب سائٹ بنائی ہے menstrupedia.com، اور ساتھ ہی کچھ کتابیں لکھی ہیں جو وہ اسکولی بچوں کے پاس پہنچاتی ہیں، ان کے بارے میں۔
یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سماج میں کافی کچھ کیا لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں تھی، تو بی بی سی نے ان کی ایک پہچان، انہیں ایک پہچان دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ دیویا آرے۔ اور اب کارکرم میں آپ کی چٹھیاں، آپ کی رائے۔
آپ کی رائے، نمسکار، سویکار کیجیے راجیش جوشی کا، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سمرن پریت کور
جی،
ان کا بھی نمسکار اور ست سری اکال۔
ست سری اکال جی، ہاں جی۔
اچھا سمرن جی، اس سے پہلے کہ آپ چٹھیاں شروع کریں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک لفافے سے نکلی ہوئی چٹھی ہے، 1, 2, 3, 4, 5, 6 آخر میں انہوں نے اپنے پاسپورٹ سائز کی تصویر لگائی ہے۔ لکھا ہے، آپ کا شروتا ایوم شبھ چنتک محمد اسلم، گرام پوسٹ سرائے گنئی، پرتاپ گڑھ، اتر پردیش۔ اور اردو میں بھی، ہندی میں بھی ایک شعر لکھا ہے، لکھتے ہیں، اردو بھی میں پڑھ پاتا ہوں لیکن ہندی میں پڑھوں گا
جی۔
جو موقع ملا تو ہم بتا دیں گے تم سے کتنا پیار کرتے ہیں سنم
جی۔
یہ صاحب، یہ ہمارے شروتا ہیں، اور لکھتے ہیں کہ میں بی بی سی ہندی پچھلے قریب 6 سالوں سے سن رہا ہوں، یوں تو بی بی سی کا ذکر اپنے بزرگوں سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن جب بی بی سی کو سوئم سنا تو واقعی میں اس کی خوبیوں کا اندازہ ہوا۔ لمبی چٹھی ہے، پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک دن بیمار پڑا تھا، اکیلے چارپائی میں، ریڈیو پاس میں تھا، جیسے ہی آن کیا تو اس میں انڈیا بول شاید کارکرم آ رہا تھا، تب سے یہ سنتے ہیں، دنیا جہان ان کو پسند آتا ہے۔ کچھ آپ کے بارے میں انہوں نے ہیڈ لائن دی ہے کہ भाई राजेश जोशी एवं अमरेश द्विवेदी जी को उनकी उर्दू नवाजी पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और राजेश जोशी भाई उर्दू शायरी की जुल्फ के असीर मालूम होते हैं, क्या बात है साहब, आपने तो ज़र्रा नवाजी कर दी, इस लायक हम कहाँ थे। फिर बहुत सारे और लोगों का नाम भी लिया है, सुशीला सिंह का नाम मैं देख रहा हूँ, सलमान रावी साहब, ज़ुबैर अहमद साहब। काम की बात यह है कि जाकिर नाइक साहब पर जो शिकंजा कसना शुरू किया है पिछले दिनों, उस पर इन्हें एतराज़ है और चाहते हैं कि हम उनसे इंटरव्यू करें। तो कुल मिला के आपकी लंबी जो चिट्ठी है उसका मुख्तसर सा जवाब मेरा तो ये है कि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब कि आपने ख़त लिखा, इतना वक्त निकाला, और इसी तरह चिट्ठी लिखते रहिए। जहाँ तक जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू करने का मसला है तो हमने गुजारिश तो की है उनसे, लेकिन फिलहाल अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है।
सर चिट्ठी एक दिल जीत लेता।
दिल जा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं। दूसरी चिट्ठियां भी हैं इसलिए मैं अब चुप होता हूं, ये हमारे श्रोता पहली बार चिट्ठी लिख रहे थे इसलिए काफी इनकी लंबी चर्चा हो गई।
जी तो मैं हाथ से लिखी दो चिट्ठियों के साथ शुरुआत करती हूँ। पहली चिट्ठी लिखी है अशोक कुमार ठाकुर ने दरभंगा बिहार से, और दूसरी चिट्ठी लिखी है रामजीलाल घोड़ेला ने बीकानेर से।
जी क्या लिखते
ये
हैं?
दोनों तारीफ कर रहे हैं उस विवेचना की जिसमें फिरोज गांधी जी को याद किया गया,
रेहान फजल ने।
जी बिल्कुल, और फिरोज गांधी के बारे में नई नई जानकारी मिली, नई पीढ़ी फिरोज गांधी के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखती, इसलिए इन्हें ये विवेचना बेहद पसंद
जी
आई।
हाँ, और इसीलिए बीबीसी को अलग, दूसरे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अलग मानते हैं लोग हमारे श्रोता, इसीलिए इतनी प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं।
ये भी हाथ से लिखी चिट्ठी है, ये लिखी है महावीर स्वामी ने सीकर राजस्थान से, जो लिखते हैं कि दिनांक 21 नवंबर 2016 की औरतों पर बीबीसी ने विशेष रिपोर्टिंग शुरू की है,
इसके अंतर्गत सीरीज की बात कर रहे हैं ये।
बिल्कुल, इसके अंतर्गत दिव्या आर्य की जो बातचीत थी रीना चौधरी से वो काफी अच्छी रही, वहीं उन्हें विवेचना बेहद पसंद आई।
हमारे पुराने श्रोता हैं जंग बहादुर सिंह गोलपहाड़ी जमशेदपुर के, उन्होंने पूछा है कि क्या ये 100 वीमेन सीरीज बीबीसी की दूसरी जो भाषा सेवाएं हैं उनमें भी चल रही है। तो जी हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी से लेकर के तमाम भाषाओं पर ये श्रृंखला चल रही है। अब आपके पास ईमेल्स हैं, अगर आप ईमेल नहीं लेंगी तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को आप नाराज कर देंगे।
तो शिकायत से शुरू करते हैं। ये शिकायत बताई है प्रमोद कुमार यादव, जिला मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, जो कहते हैं कि मेरी तकनीकी शिकायत है कि पिछले 3 सालों से इंटरनेट के माध्यम से सुन रहा हूं, और बीबीसी का जो प्रोग्राम समाप्त होता है उसके बाद जो ऑडियो अपलोड होता है,
मैं समझ गया कि इनको इंतजार करना पड़ता है। आप चेक कीजिए कहीं आपकी इंटरनेट कनेक्शन में खराबी तो नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सुनते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इंटरनेट पे भी, मोबाइल पर भी सुनते हैं और डेस्कटॉप पर भी सुनते हैं। देखिए आपकी तरफ से कोई अगर गड़बड़ी हो तो उसको दुरुस्त करवा लीजिए।
जल्दी से तारीफ कर लेते राजेश जी। बस दुनिया जहां जो इटली की राजनीतिक स्थिति पर थी, निखिल रंजन का दुनिया जहां बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा, ये लिखा है ग्राम तेरेया जिला बेगूसराय।
मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जीशान नैयर हैं जिनको बहुत बुरा लगता है अगर हम उनके गांव का नाम या तो गलत लें या नहीं लें, ग्राम तेरेया बेगूसराय से, और हमारे लगातार लिखने वाले श्रोता हैं। दूसरी ईमेल बताइए।
जी, और एक ईमेल भेजी है रामदरश शर्मा ने, लिखा है कि अभी अभी जुमेर अहमद ने अपनी रिपोर्ट में मरीना बीच को अरब सागर के किनारे बताया, जबकि वो बंगाल की खाड़ी के किनारे
है। जी ये चेन्नई में मरीना बीच है, आप सही कह रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में है। कई बार गलती हो जाती है, यही गलती हुई तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें। आप लिखते रहिए, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है तो इसलिए मैं पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल भेजना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
तो श्रोताओं आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली, और अगले कार्यक्रम में हम खेल समाचार भी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। 3 तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता है और इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। इस मामले में 2 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। यूरोपीय संघ उन 7 EU देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है जो कार निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ उत्सर्जन की धांधली को लेकर कदम उठाने में विफल रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि पायलट ने संपर्क टूटने से पहले आपात कॉल किया था। पीआईए के अध्यक्ष मोहम्मद आजम ने रिपोर्टरों को बताया कि पायलट ने स्थानीय समय अनुसार 4:09 पर इंजन में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। ग्रीस में वेतन में कटौती और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल हो रही है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। थोड़ी देर बाद यानी कि घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।